मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। AFEIS के आज 6 नवंबर 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं शुरुआत करता हूं कुछ सूचनाओं से। एक सूचना यह है कि यूट्यूब पर AFEIS ने मेरा एक लेक्चर डाला है और वह है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स पर। YouTube पर अभी 2-3 दिन पहले ये लेक्चर डाला गया है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सब उस लेक्चर को एक बार जरूर सुनने की कोशिश करें। एक बार भले ही एक बार ही सही, लेकिन आप उसे जरूर सुने। उसका कारण यह है कि इस लेक्चर को सुनने के बाद शायद मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये अनुमान लग सके, ये अंदाजा हो सके कि आपको इकोनॉमिक्स की तैयारी करनी कैसे चाहिए, इकोनॉमिक्स को समझना कैसे चाहिए, यह कहना ज्यादा बेहतर होगा। तो इसे आप सब एक बार समय निकाल करके जरूर सुने। हाँ, यहां मैं एक अपील करना चाहूंगा अपने ऑनलाइन क्लासेस के पेड स्टूडेंट से, और उनसे मेरी ये अपील है या कह लीजिए कि निवेदन है कि आप में से जिन्होंने भी इकोनॉमिक्स पर जो आपको लेक्चर प्रोवाइड किए गए हैं, लेक्चर इकोनॉमिक्स के दो भाग हैं आप जानते हैं, कुछ लेक्चर्स इकोनॉमिक्स पर हैं और कुछ लेक्चर इकोनॉमी पर है, है ना, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था। तो जिन्होंने भी ये लेक्चर सुने हों, चाहे एक पार्ट के ही लेक्चर्स क्यों ना सुने हों, वो प्लीज मेरा एक काम कर दें। और एक काम यह कि आप लेक्चर सुन चुके हैं, अब आप बकायदे इस साल जो प्री एग्जामिनेशन में इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी पर क्वेश्चन आए हैं उन्हें सॉल्व करें, और इससे पहले 2-3 साल के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उन्हें भी सॉल्व करने की कोशिश करें। मैं केवल प्री एग्जाम की बात कर रहा हूं। और फिर मुझे ये बताएं कि इन लेक्चर्स को सुनने के बाद जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो उसमें आपका अनुभव क्या रहा, आप कितने क्वेश्चंस सॉल्व कर पाए, कितने क्वेश्चंस समझ पाए, कितने क्वेश्चंस में भ्रम भी था लेकिन समझदारी के आधार पर आपने सही उत्तर ढूंढ लिया। इस तरीके से थोड़ी सी आप व्याख्यात्मक तरीके से अपनी बात मुझ तक पहुंचाएं, इससे मुझे बहुत मदद मिलेगी। प्लीज ये काम जरूर करें, मेरे लिए ही सही। दोस्तों जो दूसरी सूचनाएं होती हैं शुक्रवार की, वो आप जानते हैं कि कल और परसों डेली ऑडियो लेक्चर नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन जो प्रेस क्लिपिंग्स हैं वो आपको एज इट इज मिलती रहेंगी। साथ ही साथ योजना के 2 आर्टिकल्स आपको पढ़ने को मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश के, और इसी तरह से कुरुक्षेत्र के भी आपको 2 आर्टिकल्स मिलेंगे हिंदी और इंग्लिश के, और साथ ही एक वीकली क्वेश्चन मेन एग्जामिनेशन के पैटर्न पर अभ्यास के लिए आपको उपलब्ध कराया जाता है। फ्रेंड्स आज के मुख्य विषय के तहत मैं राष्ट्रीय बांस मिशन पर थोड़ी सी बात करूंगा, लेकिन एक अलग तरीके से मैं बात करूंगा, थोड़ी सी प्रतीक्षा करें। इससे पहले मैं थोड़ी सी आपसे एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करना चाह रहा हूं, और वह है यूनिडो, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन। देखिए मैंने औद्योगिक शब्द पर जोर दिया है ना, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यूनिडो। अगर आपने कल की न्यूज सुनी हो तो न्यूज के बिल्कुल आखिरी पार्ट पर संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के बारे में कुछ बातें उसमें कही गई थी, है ना, भारत के संदर्भ में। वो बहुत छोटी सी न्यूज थी लेकिन मुझे लगता है कि वह न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि प्री एग्जामिनेशन में आपने महसूस किया होगा कि कभी कभी ऐसे संगठनों के बारे में पूछ लिया जाता है जो हमारे ध्यान में उतने नहीं रहते। जैसे मान लीजिए इस बार अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ लिया जाता तो बहुत ही कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, सच पूछे तो पूछा ही जाना चाहिए था, खासकर कोविड के दौर में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की इतनी बातें हो रही थी, लेकिन उस पर नहीं पूछा गया। कभी कभी ऐसे संगठनों पर पूछ लिया जाता है, लगता है कि अरे ये क्यों, कौन है, क्या है, लेकिन उनकी चर्चा किसी न किसी संदर्भ में हो चुकी होती है। तो यूनिडो की चर्चा हुई है, और वैसे भी इस संगठन के बारे में मुझे लगता है कि आपको थोड़ी बहुत जानकारी रखनी ही चाहिए। अब आप देखिए कि मैं ये जो नाम है यूनिडो, इसके आधार पर आपको ये बताने जा रहा हूं कि कैसे आप अपने दिमाग में कुछ बातें लेकर आएंगे, और इसी तरह से आज मैं मुख्य विषय पर भी बात करूंगा इसी पैटर्न पर। यूएन इसका मतलब है कि ये जो यूनिडो है ये यूनाइटेड नेशन से जुड़ा हुआ ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। सीधी सी बात है कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यानी कि औद्योगिक विकास करना। अब फिर से आप अब सोच करके देखिए कि जब वो औद्योगिक विकास की बात कर रहा है ये संगठन, तो ये औद्योगिक विकास कहां करेगा? क्या जर्मनी में करेगा, क्या ब्रिटेन में करेगा, क्या अमेरिका में करेगा, कहां करेगा बताइए? सीधी सी बात है कि औद्योगिक विकास वहां करेगा जहां इसकी जरूरत है, जहां औद्योगिक विकास नहीं हुआ है। तो ये जो यूरोप के देश हैं, जो अमेरिका है, ये तो पहले से ही औद्योगिक रूप से बहुत ज्यादा डेवलप्ड कंट्री हैं, तो वहां औद्योगिक विकास की जरूरत नहीं है। तो कहां जरूरत है? डेवलपिंग कंट्री के लिए जरूरी है ये। यानी कि यह एक ऐसा संगठन है जो डेवलपिंग कंट्री में औद्योगिक विकास के लिए मदद करता है, सहयोग करता है, नीतियां बनाता है। आप जो भी बात कह ले, नीतियां तो नहीं बनाएगा, नीतियां तो सरकार ही बनाएगी, लेकिन उसके लिए जो भी इनपुट चाहिए वह प्रोवाइड करेगा, राइट? अब आप देखिए कि जो यूएन के संगठन होते हैं, यूएन के संगठन एक तो बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट को लेकर के चलते हैं, लेकिन कुछ संगठन ऐसे होते हैं जो बहुत ही स्पेशलाइज्ड किस्म के होते हैं। जैसे आप देखिए कि आईएएस सिविल सर्वेंट आप बनने जा रहे हैं, तो सिविल सर्वेंट में अगर आप आईएएस बन जाते हैं तो आप एक जनरल किस्म के अधिकारी हैं, लेकिन अगर आप बिल्कुल स्पेशलाइज्ड इन आप टैक्सेस में चले जाते हैं, इनकम टैक्स में चले जाते हैं, स्पेशलाइज्ड हो गए आप, इनकम टैक्स के स्पेशलाइज्ड हो गए। पुलिस सर्विस में चले जाते हैं तो पुलिस के स्पेशलाइज्ड हो गए। तो ये चूंकि औद्योगिक विकास को देखने वाला ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मतलब ये हुआ कि ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। देखिए प्री एग्जामिनेशन में जो आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं वो इसी तरीके से तैयार किए जाते हैं कि आप अपने ढंग से सोच पा रहे हैं कि ये नहीं सोच पा रहे हैं। चलिए इसी से जुड़ा हुआ मैं एक आपसे एक प्रश्न करता हूं, और वो ये प्रश्न है कि आप ये बताइए कि ये जो यूनिडो है क्या भारत में काम कर रहा होगा? अब आपके दिमाग में एकदम से उत्तर आ गया होगा कि हाँ हाँ भारत में काम कर रहा होगा, ठीक है। और अगर भारत में काम कर रहा होगा तो अगर मैं पूछूं कि इसका क्या इसका भारत में कार्यालय होगा? देखिए जो बड़े बड़े जो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके कार्यालय सभी देशों में नहीं होते, है ना? कुछ देशों के कार्यालय किसी एक देश में रख दिए जाते हैं, जैसे भारत है, भारत के आसपास दूसरे देश हैं, बर्मा है, म्यांमार है, लंका है, बांग्लादेश है, ये सब देश है ना आसपास में। तो अगर मैं आपसे अंदाजा लगाने को कहूं कि इस एरिया में एक कार्यालय इन्होंने रखा है यूनिडो ने, कि भाई जो इस क्षेत्र के काम को देख सके, तो क्या उसका मुख्यालय भारत में हो सकता है? तो फिर आप इस पर सोचेंगे तो आप इसके उत्तर को शायद समझ जाएंगे कि हाँ होगा या नहीं होगा। मैं इसके उत्तर जानबूझ करके नहीं दे रहा हूं, इसके उत्तर आप खुद ढूंढिए। क्या इसका कोई संबंध जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो तैयार किया गया है 2030 तक के लिए, यदि आप इसके बारे में जानते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में, तो क्या इस ऑर्गेनाइजेशन का उससे कोई कनेक्शन हो सकता है? सोच करके देखिए, इन पर भी आप विचार कीजिए, और बिना किताब देखे सोचिए, बिना पुस्तक देखे सोचिए, राइट? तो दोस्तों ये यूनिडो के बारे में थोड़ी सी बातें थी। अब मैं आता हूं राष्ट्रीय बांस मिशन के बारे में, है ना? हमारे जो गडकरी जी हैं केंद्रीय मंत्री, उन्होंने राष्ट्रीय बांस मिशन के बारे में कुछ बातें कही, और जो इस बांस मिशन पर जो परियोजनाएं लागू की गई हैं उसके बारे में कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस को बता रहे थे। तो उन्होंने दो इंपॉर्टेंट बातें कही हैं सामान्य तौर पर, जो एक प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से है कि चार वर्षों में जो नॉर्थ ईस्ट का हमारा एरिया है वहाँ और पूरे देश में बांस से संबंधित 17 परियोजनाएं 17 प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं, और असम में बकायदे बांस और औद्योगिक पार्क भी स्थापित किया गया है, ठीक है। अब आइए हम इसी पैटर्न पर इसको समझने की कोशिश करते हैं जिस पैटर्न पर अभी हम लोगों ने यूनिडो के बारे में कुछ बातें की हैं। राष्ट्रीय बांस मिशन, इंग्लिश में है ये नेशनल बैम्बू मिशन, NBM, ठीक है। चलिए आप सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और बांस मंत्रालय है उसमें आप सचिव हैं, और आपसे कहा गया है कि आप एक राष्ट्रीय बांस मिशन तैयार कीजिए, उसके लिए आप बताइए, भूल जाइए आपके और क्या चीजें हैं। आपको देश में बांस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक योजना तैयार करनी है। अब आप योजना तैयार कीजिए, और वो राष्ट्रीय योजना है, तो आप उसमें किन किन बातों को रखेंगे? घबराइए मत, परेशान मत होइए। बांस आपके लिए कोई नया वृक्ष नहीं है, नया पौधा नहीं है। बांस आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बांस को आपने देखा भी है और व्यावहारिक स्तर पर उसका उपयोग भी किया होगा। इतनी समझ तो आप में होगी ही होगी, चाहे आप महानगरों में ही क्यों न रह रहे हों। और अगर इतनी भी समझ नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल काम हो जाएगा फिर। और अब आप योजनाएं तैयार कीजिए, एक दो पॉइंट पॉइंट लिखते चले जाइए कि देखिए अगर हमें बांस मिशन को सफल बनाना है, एक योजना तैयार करनी है, तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा। उसका उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, तो उत्पादन बढ़ाने के लिए आप क्या क्या करेंगे। उत्पादन अगर बांस का हो गया तो अब उसका उपयोग भी तो बढ़ाना पड़ेगा ना, तो उपयोग के लिए अब आप क्या क्या करेंगे। उपयोग अगर हो गया तो फिर विपणन के लिए आप क्या क्या, इस तरह से सोचते चले जाइए। तो एकदम से आप जो तैयार करेंगे, मान करके चलिए कि उसका लगभग लगभग 75% मोटे तौर पर मैं कह रहा हूं वही होगा जो ऑलरेडी राष्ट्रीय बांस मिशन में है। आप करके देख लीजिए। आपने मान लीजिए कि इस पर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, सामान्य तौर पर ही आप जानते हैं और मैंने जो आपको तरीका बताया है आप उस तरीके को उपयोग में लाइए, क्योंकि इतनी इकोनॉमिक्स की समझ तो आप में होनी ही चाहिए कि अगर आप चाहे चावल का उत्पादन बढ़ाएं या तिलहन का उत्पादन बढ़ाना चाहें तो उसके लिए आप क्या करेंगे। बहुत सिंपल से कुछ काम करेंगे और उन सिंपल से कामों की आप लिस्ट तैयार कर लीजिए और फिर आप बकायदे जो राष्ट्रीय बांस मिशन है उससे जाकर के उसको मैच कर लीजिए और देखिए कि सच में वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये इसका एक पार्ट हुआ, लेकिन इसका एक दूसरा पार्ट भी है, क्योंकि अगर इसी एक पार्ट तक आप सीमित रह जाएंगे तो बात नहीं बनेगी। दूसरा पार्ट यह है कि सरकार ने इसके लिए क्या कुछ विशेष उपाय किए हैं। जैसे मैं अगर ये कहूं कि सरकार बांस उत्पादकों को सब्सिडी देगी, ये आप अपने उसमें ले सकते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा बांस का रकबा बढ़ाएं, लगाएं, बांस के पौधे लगाएं, तो सरकार उनको आकर्षित करने के लिए सब्सिडी देगी। अब कितनी सब्सिडी देगी इसको तो आपको पढ़ना पड़ेगा, इसमें आप अनुमान नहीं लगा सकते। सरकार ने अगर कोई लक्ष्य निर्धारित किया है कि हम इतना हेक्टेयर जमीन बांस में लगाएंगे और इतने लोगों को लाभ पहुंचेगा और इतना हम खर्च करेंगे, तो ये आप अनुमान से नहीं कर सकते। तो ये जो सेकेंड पार्ट होता है ये आप अपनी तैयारी से ऐड कर देते हैं, बात खत्म हो जाती है। लेकिन जब तक आपके अंदर टॉपिक के बारे में सोचने समझने और अपनी तरफ से लिखने की क्षमता नहीं आएगी, अब का जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का पैटर्न हो गया है दोस्तों, वह आपके लिए बहुत कठिन साबित होगा। तो ये यही छोटा सा उद्देश्य खासकर राष्ट्रीय बांस मिशन के माध्यम से आप तक पहुंचाना था। दोस्तों मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं और इन्हीं में से दो दोस्तों के नाम हैं शिवेंद्र और अनूप राज जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से, आप सबका बहुत बहुत आभार। दोस्तों अब दो दिनों के बाद मुलाकात होगी, आप सब अपना अपना ख्याल रखें, मेरा अभिवादन स्वीकार करें, मेरी शुभकामनाएं भी स्वीकार करें। नमस्कार।